समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और मेरे साथ हैं आज मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। पूरे आधे घंटे हम आपके साथ रहेंगे और देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज के संक में महानगरों की खबरें होंगी और मौसम का हाल जानेंगे और अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। लेकिन सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार सुभद्रा को।
नमस्कार एंड हेलो फहद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल यू लवली पीपल ट्यून इन टू अस दिस मॉर्निंग। सो टाइम फॉर आज सवेरे, आवर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस एंड एंजॉय द प्रोग्राम। सो वी बिगिन फहद विद सम न्यूज।
जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख इस बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन होगा और इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी।
The Assam government will introduce the Uniform Civil Code UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill.
और सुभद्रा, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन पाबंदियों के कारण किसानों, खासकर आलू उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से ये प्रतिबंध हटाने का वायदा किया था और इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निकाय भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटाला से जुड़े मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार ने उन सभी लोगों की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं जिन्हें तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने कई आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Directorate General of Foreign Trade, DGFT, has amended the export policy from restricted to prohibited. This prohibition shall not apply to sugar being exported to the EU and USA under CXL and TRQ quota, the Advance Authorization Scheme AAS, and government-to-government shipments to meet food security needs of other countries. Consignments already in the physical export pipeline are also exempted. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a 5-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in Ministry of External Affairs CB George informed that on the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Energy security will dominate the agenda, with India looking to secure stable supplies amid rising geopolitical tensions in West Asia and continued pressure on global oil markets. We have more from our correspondent.
India and the UAE share one of the most significant energy partnerships in the region. The UAE is currently the fourth largest source of crude oil for India, meeting nearly 11% of country's total requirement. On liquefied natural gas, Indian companies have locked in long-term supply deals with Abu Dhabi's ADNOC Gas for a cumulative 4.5 million tons per year. Now let's hear from Asim Mahajan, Additional Secretary, Gulf.
We share a very vibrant partnership in the area of energy. The UAE is an important partner in our energy security. Last year, the UAE was the fourth largest source of crude oil, meeting nearly 11% of our requirement. In the area of LNG, Indian companies and the UAE Abu Dhabi National Oil Company ADNOC Gas have entered into long-term supply contracts for cumulative of 4.5 MMTPA LNG to India.
The linking of India's UPI payments platform with UAE's ERNI system has already transformed cross-border transactions for businesses and Indian diaspora. The UAE remains India's third largest trading partner and the seventh largest cumulative source of foreign investment over the past 25 years. As West Asia navigates one of its most turbulent periods in recent memory, Friday's meeting in Abu Dhabi is being seen as an important anchor of stability and long-term strategic intent for both nations. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
और सुभद्रा, कल उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और बिजली गिरने के साथ हुई बारिश से 43 लोगों की मौत हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है. और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी के पास.
आंधी तूफान से हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है. कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया. सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ.
और सुभद्रा, ये मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर की नमी की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में पड़ा है.
Government has given 1 year extension to Directorate of Central Bureau of Investigation, Praveen Sood, according to an official order issued by the Department of Personnel and Training. The Appointments Committee of the Cabinet gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond 24th of this month.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन की शिखर वार्ता के लिए चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंच गए हैं. उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ईरान युद्ध, वैश्विक ऊर्जा संकट, व्यापार तनाव, ताइवान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. इस बैठक को वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वार्ता में अमरीका और चीन के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने, चीन द्वारा अमरीकी उत्पादों की खरीद बढ़ाने और होर्मोज जलडमरू मध्य से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.
IPL cricket, Virat Kohli created history and broke several records during Royal Challengers Bengaluru's 6-wicket victory over Kolkata Knight Riders in Raipur last night. Kohli scored an unbeaten 105 runs off 60 balls, including 11 fours and 3 sixes. It was his 9th IPL century, the most by any player in the tournament's history. During his innings, he also completed 14,000 T20 runs, becoming the first Indian and the fastest player ever to reach the milestone, breaking Chris Gayle's record. He also crossed 400 runs this IPL season. Royal Challengers Bengaluru defeated Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur last night, and today Punjab Kings will face Mumbai Indians in Dharamshala at 7:30 p.m.
श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का. सुभद्रा से जानेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें.
Yes, Farhad, starting with news from Chennai, the Tamil Nadu government has appointed senior advocate Vijay Narayan and its advocate general. As its advocate general, he will be representing the state government in Madras High Court. He is the successor of P.S. Raman, who resigned on Tuesday. Narayan has served as advocate general during the AIADMK rule from 2017 to 2021. The Aringar Anna Zoological Park in Vandalur has received a pair of Asiatic lions from Indore Zoo under an animal exchange program designed to strengthen conservation breeding and diversify the genetic pool of the endangered species in captivity. The lion sourced from two distinct gene pools will be integrated into the zoo's lion safari after they finish a four-week quarantine under vet supervision. Deputy Director Manish Meena said that genetic distinction between the two animals was central to the acquisition. He also said that after quarantine, the lions would be housed in adjoining enclosures to build compatibility before being introduced into the safari area. Going to Bengaluru now, Chief Minister Siddaramaiah will lay the foundation stone for a new international cricket stadium at Anekal near Bengaluru on May 23rd. The proposed stadium with a seating capacity of 80,000 is expected to become the second largest cricket stadium in India after the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The ₹943 crore project will be developed on 75 acres of Karnataka Housing Board land at Suryanagar in Anekal and is expected to be completed within 3 years. The project forms part of a larger sports complex approved by the state government last year. Karnataka will celebrate the 12th International Day of Yoga on June 21, 2026 under the theme Yoga for Health, Knowledge and Global Peace. In line with the Ministry of Ayush guidelines, the state government is organizing a large-scale program across Karnataka to promote yoga and holistic well-being. The main state-level event will be held at Vidhan Sautha, Bengaluru, with around 5,000 participants expected to take part in the mass yoga demonstration based on the common yoga protocol. The program is expected to be attended by the Honorable Governor, Chief Minister, Ministers, legislators, officials and yoga gurus. Taking you to Hyderabad now, Chief Minister Revanth Reddy has announced major development plans for Telangana's urban areas. In a meeting yesterday, he discussed creating growth corridors that will connect important cities across the state. The government will develop three main corridors. The first connects Warangal, Karim Nagar and Khammam. The second links Mehboob Nagar, Bhootpur and Jadcherela. The third connects Kotagurem, Palvancha and Sujata Nagar. These corridors will improve transportation and boost economic growth. The Chief Minister emphasized that cities must plan for the next 25 years. Every municipality will get outer ring roads and modern infrastructure. The plans include solid waste management systems and water treatment plants. And Farhat, over to you now for rest of the news.
जी दिल्ली मुंबई कोलकाता का रुख कर लेते हैं. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर की. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सहित पूरे देश के विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प के बल पर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. उन्हें कहा है कि उन्होंने जीवन में हर अनुभव आगे बढ़ाने, सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर देता है. वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई दी. दिल्ली में मानसून से पहले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राजधानी के बड़े ड्रेनों से 76% गाद निकाला जा चुका है. आधुनिक मशीनें, लगातार निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए नालों की सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि 29 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने के लक्ष्य में से अब तक 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच कल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संस्थागत समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक के दौरान आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने समन्वित और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल महिलाओं को समय पर सहायता और न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है. और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ कल नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगो का अनावरण किया. इस लोगो में त्रिशूल दर्शाया गया है जो नासिक के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्रतीक है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है. इस अवसर पर श्री फडणवीस ने कहा कि ये लोगो की भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है. वहीं महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि बिबड़ेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस महीने की 3 तारीख को हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नतीजे देख सकेंगे। इस वर्ष पहली बार सेमेस्टर आधारित परीक्षा प्रणाली लागू की गई थी। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 15,000 से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अंतिम परिणाम तीसरे और चौथे सेमेस्टर में प्राप्त अंकों को मिलाकर तैयार किया जाएगा। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं सुभद्रा। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज सुबह से ही हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने भी आज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अगर कोलकाता की बात की जाए तो वहां पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान में बदलाव आएगा और ये 27 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। बेंगलुरु इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडर लाइटनिंग। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 28 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 41 डिग्री सेल्सियस।
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज है 14 मई 2026।
1607 द फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट इन नॉर्थ अमेरिका जेम्सटाउन वर्जीनिया वाज एस्टैब्लिश्ड। 1787 डेलीगेट्स गैदर इन फिलाडेल्फिया टू ड्रॉ अप द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
और 1796 में आज ही के दिन चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला सफल टीकाकरण किया जिससे आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान की नींव पड़ी।
फर्स्ट एडिशन ऑफ लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज वाज पब्लिश्ड दिस डे इन 1842।
14 मई 1878 को वेस्लीन का ट्रेडमार्क पहली बार आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत किया गया।
एंड 1900 द ओलंपिक गेम्स ओपन इन पेरिस हेल्ड एज पार्ट ऑफ द 1900 वर्ल्ड्स फेयर।
1948 में इसराइल ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की और डेविड बेन गुरियन को पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं 14 मई भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन बना। 1954 में आज ही के दिन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जी वी मावलंकर ने यह ऐतिहासिक घोषणा की थी कि हाउस ऑफ द पीपल को अब लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा संविधान के प्रति निष्ठा, जनता की आकांक्षाओं और राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों की सजीव संस्था है।
एयर इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट शेड्यूल्ड सर्विस फ्रॉम बॉम्बे टू न्यूयॉर्क ऑन May 14, 1960, यूटिलाइजिंग अ बोइंग 707-420 नेम्ड गौरी शंकर। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम एन एशियन एयरलाइन ऑपरेटेड अ जेट एयरक्राफ्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स।
1955 में आज के दिन शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और कई पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच वॉर्सा पैक्ट नामक सैन्य गठबंधन का गठन किया गया। 1973 में नासा ने अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब लॉन्च किया। वहीं 1999 में आज ही के दिन सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट की लॉर्ड्स इंग्लैंड में शुरुआत हुई। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर जहां हम कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद करेंगे।
यस, ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेटेस्ट अमेरिकन एंटरटेनर्स ऑफ ऑल टाइम फ्रैंक सिनाट्रा who passed away this day in 1998. Singer-actor Sinatra rose to fame singing big band tunes which were jazzy. Later his hit songs of the 1940s and 1950s went on to appear in films that earned him several Oscars and Grammys. He left behind a massive catalog of work that includes iconic tunes like Strangers in the Night, It's Playing in the Background, My Way, New York, etc.
Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart
told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people.
और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मृणाल सेन की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। इनकी अधिकतर फिल्में बंगला भाषा में हैं। बंगाली, उड़िया, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते रहे। मृणाल सेन ने फिल्मों में निर्देशन की शुरूआत की थी 1956 में बंगाली फिल्म रात भोरे से। वहीं 1958 में उनकी दूसरी सफल फिल्म आई नील आकाशेर, और इस महत्वाकांक्षी फिल्म में ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चीनियों के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष से की थी। तो आइए इसी फिल्म से ये प्यारा संगीत सुन लेते हैं।
नीला काशेर नीचे पृथ्वी तार पृथ्वीर परे ओई नीला काश तुमी देखेछो कि আকাশের নিচে পৃথিবী আর পৃথিবীর পরে ওই নীল আকাশ তুমি দেখেছ কি আকাশ আকাশ শুধু নীল।
1959 की ये बंगला फिल्म जिसने मृणाल सेन को पहचान दिलाई थी और महादेवी वर्मा की कहानी पर ये आधारित फिल्म थी। 1960 की उनकी फिल्म बाईशे श्रावण, जो कि 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल पर आधारित थी, और आकाश कुसुम ने एक महान निर्देशक के रूप में मृणाल सेन की छवि को विस्तार दिया। मृणाल की अन्य सफल बंगाली फिल्में रही इंटरव्यू कलकत्ता 1972 और पदातिक 1973 में आई, जिन्हें कलकत्ता ट्रायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उनकी पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। तो आइए सुन लेते हैं भुवन शोम से ये प्यारा संगीत।
चंदन जो घुट जो रा रंग जो रा वीराना जो गलिया ने रंग जो हो रा भाभी जी तारा लहरियो तो लहरे कसबी तोर रे जो आपो मने लहरियो तो आप दिल मारो रे नन्दी पूछे रा।
इसमें भुवन शोम की भूमिका निभाई थी उत्पल दत्त ने, और ये एक सख्त बूढ़ा अकेला रेलवे अफसर होता है जो रिश्वतखोरों से नफरत करता है, नियम का पक्का होता है, और उसकी मुलाकात होती है गौरी से जो बहुत ही सादगी के साथ रहती है, और उसके बाद दिन की कहानी शुरू हो जाती है।
And you know, friends, we just talked about Frank Sinatra a little while ago. So, crooner to another crooner now, guitar virtuoso, blues really king, or B.B. King, went away this day in the year 2015. King of the blues, B.B. King began as a disc jockey in Memphis before finding fame as a blues and R&B guitarist. King introduced a sophisticated style of soloing based on fluid string bending and shimmering vibrato that influenced many later blues electric guitar players.
Sometimes I get impatient, but she cools me without words, and she comes so sweet and softly, my heart, and have you But I find that it's just begun, 'cause she gets me
Hollywood film director-producer George Lucas celebrates his birthday today, and we all know his best-known film, the two Star Wars trilogies, the four Indiana Jones movies and American Graffiti. He started producing films as a student at the University of Southern California and was awarded a scholarship by Warner Brothers in 1967. Since then, his own production company, Lucasfilm, owns Industrial Light and Magic and Pixar Animation Studios. And also 1984 Facebook man, Mark Zuckerberg, was born this day in White Plains, New York. This American computer programmer founded Facebook, a social networking website, in 2004, co-founded rather. Zuckerberg took the company public in May 2012, and with, of course, majority shares, he became the world's youngest self-made billionaire in 2008 at age 23.
और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक जगदीश चंद्र माथुर ने, जिन्होंने आकाशवाणी में भी काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को रेडियो में वो लेकर आए। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ इन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने कई सारे रेडियो नाटक भी लिखे, जिसमें ओ मेरे सपने, बंदी, धरती का सवाल, अंधेरे के बाद शामिल हैं। इसके अलावा उनके कई सारे निबंध संग्रह आए, नाटक और रंगमंच, आधुनिक हिंदी नाटक। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची, कोणार्क 1951 माथुर जी की पहचान बनी, रीढ़ की हड्डी 1947 में प्रकाशित हुई, 20 पन्ने का ये एकांकी पर पूरा समाज दिखाई दिया। और इसके अलावा 1969 में पहला राजा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया।
And friends, Australian-born actress Kate Blanchett celebrates her birthday today. And another Hollywood great, Rita Hayworth, passed away this day. Rita achieved fame during the 1940s, appearing in 61 films over 37 years. The press coined the term the love goddess to describe Hayworth after she had become the most glamorous screen idol of the 1940s. And Jay Bekenstein, saxophone player, co-founder of smooth jazz outfit Spyro Gyra, turned 75 years of age today. Grew up in a musical family. His mother was an opera singer, father a jazz buff. Jay grew up listening to music of Louis Armstrong, Charlie Parker, Sonny Rollins, etc. Along with Spyro Gyra, Bekenstein also plays for other musicians. A guest with Dream Theater, here's a snatch of his solo, Another Day, that's what you're listening to.
और श्रोताओं, आज जन्मदिन है प्रशंसित भारतीय फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता सचिन खेड़ेकर का, जो हिंदी, मराठी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और मजबूत स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने फिल्म तेरे नाम देखी होगी तो सलमान खान के बड़े भाई के रूप में वो नजर आए थे, तो उसी फिल्म से ये डायलॉग सुन लेते हैं।
मैंने सुना है कल बड़ा हंगामा हो गया, खूब मारपिटाई की कॉलेज में।
मारपिटाई नहीं भैया, मैंने उनकी टांगे तोड़ दी। अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचा ना तो एलेक्स के लोग कनक को मार दिए होते।
अरे तुम्हें जरूरत क्या है किसी और के फटे में टांग डालने की? हाँ,
कमाल कर रहे हैं, मेरा दोस्त है, अगर कोई आपको मारने आता तो क्या मैं चुप बैठता? और फिर कॉलेज भी तो मेरा ही है।
नहीं था, कितने साल हो गए कॉलेज पास किए हुए तुम्हें, फिर भी वहां बैठा रहता है, प्लेटफॉर्म पर टंगा रहता है बिना वजह। अरे कुछ काम वाम करना है या यूं ही आवारगी में उम्र गुजारनी है?
बस। And friends, electric bass player, lead vocalist, the rock icon of Cream supergroup Jack Bruce took birth this day in 1943. With his Gibson EB3 electric bass, Bruce became one of the most famous bassists in rock, followed by the next generation of bassists like Sting, Jim Shaw, Geddy Lee, Geezer Butler, etc.
It's getting near dawn, when lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise.
The track is called Sunshine of Your Love.
I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling.
श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा, क्योंकि समय हो चुका है 7:59 और 33 सेकेंड। तो सुभद्रा और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।